इससे पहले हम दुआ करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल रात मेरा ख्याल है कि मैंने एक खातून से कहा था, अगर वो हमारी हदायत पर अमल करे तो उसके लिए ये हो जाएगा और बच्चे के सर में जो पानी है वो सूख जाएगा। और कल रात ही उस बच्चे का सर ठीक हो गया था और सर के मुआयना से पता चला कि सर तकरीबन एक या आधा इंच कम हो गया है। बस वो खातून उस बच्चे को यहाँ लेकर आई है। अब मैंने ये इस वजह से किया है बहन, क्योंकि इसका कोई मकसद है। देखें, जब आप इस किस्म के खास काम को होते हुए देखते हैं तो ये आपके ईमान को बढ़ाता है ताकि आप ईमान रख सकें। बाज़ुकात मैं इस तरह करता हूँ, हो सकता है मैं किसी शख्स से कहूँ खड़ा हो जा और एक या दो कदम बढ़ा और अपना हाथ हिला, अपनी उंगलियों को हरकत में ला ताकि पता चल सके कि वो कुछ मुख्तलिफ कर सकते हैं और वो देख सके कि ये सब कुछ ऐसे ही है, ये सच है। बस वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये नहीं होगा, मगर ये तो हर मर्तबा होता है। देखें, ये होता है। अब कितने हैं जो चाहते हैं कि उन्हें दुआ में याद रखा जाए? क्या आप अपने हाथ उठाकर कहेंगे खुदावंद ये बख्श दे? आए, अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद, जैसे ही हम इस पुराने अजीमुल शान गीत ओनली बिलीव को चर्च में सुनते हैं जो कि मेरे बेशकीमत दोस्त पॉल रीडर ने लिखा था, हम उस लड़के के बारे में सोचते हैं जिसका बाप उसे शागिर्दों के पास लाया था और अभी 10 दिन से ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि यीशु ने उन्हें इख्तियार दिया था कि बदरूहों को निकालो और बीमारों को शिफा दो, लेकिन वो यहाँ मुकम्मल तौर पर मिर्गी के केस में नाकाम हो चुके थे और उन्होंने देखा कि हमारा खुदावंद आ रहा है और बाप भाग कर गया और कहा, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर, मेरे बेटे को एक बदरू बहुत सताती है, मैं उसे तेरे शागिर्दों के पास भी लाया था मगर वो उसे ठीक नहीं कर सके। यीशु ने कहा, अगर तू ईमान रखे तो मैं ये कर सकता हूँ, फक्त एतकाद रख। ऐ खुदा, तू तब से अब तक जरा भी तब्दील नहीं हुआ है, तू आज भी उसी मोहब्बत शफकत और भलाई से बड़ा खुदा है जैसा तू तब था, वैसा ही तू आज है। ऐ खुदावंद, हम सब भी उस बाप की तरह चिल्लाते हैं, खुदावंद तू हमारी बेइत्तेकादी का इलाज कर, तेरे लिए करना बहुत आसान है। ऐ बाप, हम ठुकराए हुए हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने कल रात उस बच्चे को छुआ था। हमने देखा था किस तरह उसका सर सूजा हुआ था और कल रात हड्डी तकरीबन एक आधा इंच सिरकी हुई थी। ऐ बाप, हम इस काम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं और हम जानते हैं कि हमारे डॉक्टर इस पर रिसर्च करने में नाकाम हो चुके हैं और ये कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन तू आज भी खुदा है और सब हालतों का मालिक है। ऐ बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस माँ की वफादारी, अच्छाई और ताबेदारी के लिए कि इसने उस डोरी को लेकर कागज पर चिस्पा कर दिया और यहाँ सारी आवाम के सामने गवाही दी और खुदा के जलाल के लिए उसे यहाँ लाई है और होने दे इसका बच्चा तेरे जलाल के लिए इस नॉर्मल हालत में जीता रहे। ऐ बाप, इन उठे हुए हाथों को देख, इनमें से हर एक जरूरतमंद है। ऐ बाप, मैं खुद भी जरूरतमंद हूँ और बहुत सारे यहाँ खतूत की सूरत में इस बॉक्स में पड़े हुए हैं, ये भी जरूरतमंद हैं, ये लोग वाकई जरूरतमंद हैं। इनके पास से गुजर मत जाना है खुदावंत, बल्कि हर एक आज रात अपनी जरूरत को हासिल करे। काश ये इस माँ की गवाही को बतौर मिसाल ले सके और बता सके कि जब तू बोलता है तो फिर कुछ होता है, क्योंकि ये तू है। हम में से हर एक ये करे और इसे अमल में लाए क्योंकि ये तकमील शुदा काम है। खुदावंद ये बख्श दे कि ये तमाम खतूत और रुमाल जो लोगों ने यहाँ लाकर रखे हैं, ये सब लोग शिफा पा जाएं। ऐ बाप, हर एक शख्स जिसने हाथ उठाया हुआ है, काश ये सब अपनी दिली तमन्ना हासिल करें। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप तशरीफ रखें। मैं आपको बस वो धागा दिखाना चाहता हूँ जो इस खातून ने दिया, यहाँ है आप, जो इस छोटे बच्चे के सर पर था जो सुकड़ गया था, जैसा कि खुदावन ने हमसे वादा किया है और पाकरू के वसीले कल रात उसने ऐसा कर दिया। क्या ये हैरत अंगेज नहीं है? बस इससे हमारे ईमान की हौसला अफजाई हुई ताकि हम ईमान रखें। अब देखें, जब यीशु ने मरकस 11:23 में उस दरख्त से कहा, आइंदा कोई शख्स इस दरख्त से फल ना खाए, और शायद वो जोर से चिल्लाया ना हो। कैसे कहा? यकीनन उसने बड़े आराम से उसे कहा होगा और शागिर्द साथ थे, मेरा ख्याल है उनमें से एक ने उसे सुन लिया था। फिर वो जिसे मिर्गी पड़ती थी, खुदावन यीशु के सामने आया और उस लड़के को ऐसा दौरा पड़ा जो शायद कभी पड़ा हो। हो सकता है वो इस तरह जमीन पर गिर पड़ा हो जैसे मुर्दा है, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि आज उसकी मुलाकात उससे हो गई है जिसका ईमान शागिर्दों से बड़ा है। अब मैं उससे कहना चाहता हूँ जो इलाही शिफा पर ईमान नहीं रखता वो इसे देखे। यीशु ने उन्हें इख्तियार दिया था कि वो बदरुहों को निकालें। वो नाकाम हो चुके थे, मगर वो कुवत नाकाम नहीं हुई थी, नाकाम वो हुए थे। यीशु ने कहा, जब उन्होंने कहा हम उसे क्यों नहीं निकाल सके, उसने कहा अपनी बेइतकादी की वजह से। कलीसिया के अंदर आज भी वो कुवत मौजूद है। खुदा ने वो कुवत कलीसिया से कभी नहीं निकाली, लेकिन कलीसिया के पास इतना ईमान नहीं कि उसको अमल में ला सके। ये ठीक है और ये बिल्कुल सादा है। बाज़ औक़ात हम इसे बहुत मुश्किल बना देते हैं, लेकिन अंजील इसे आपके लिए बिल्कुल सादा बनाती है। खुदा ने इस तरह कहा है और ये तय है और यही सब कुछ है। फक्त ईमान रखें और आगे बढ़ें। जब यीशु ने कहा कोई शख्स अब तुझसे ना खाए, तो फिर भी उसके पत्ते खूबसूरत और चमकदार नजर आ रहे थे जैसे वो थे, और छाल भी वैसी ही थी, लेकिन नीचे जमीन में जो उसकी जड़ों में जिंदगी थी वो जिंदगी खत्म होना शुरू हो गई थी। बस इसी तरह कैंसर और हर एक बीमारी के साथ होता है। अगर आप चाहें तो जब आप खुदा के कलाम को कबूल करते हैं तो ये कैंसर की गहरी जड़ों तक पहुंच जाता है, और हो सकता है आपका हाथ सख्त हो जाए और इलाही शिफा के साथ कुछ भी ना हो। लेकिन अगर तू एतकाद रखे, समझे, तो कलाम वहाँ काम करने के लिए पहले ही जा चुका है। यीशु ने कहा अगर तू इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और अपने दिल में शक न करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। क्या ये खूबसूरत बात नहीं है? कलाम में किसने ये बात कही है? इब्ने खुदा ने। ये किसके अल्फाज हैं? आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन उसका कलाम हरगिज न टलेगा। अब एक ही तरीका है कि आप ये कर सकते हैं कि आपका हदफ ठीक हो और आपका मकसद ठीक हो। अब अगर मैं जाता हूँ और कहता हूँ मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि मैं ये पहाड़ हटा सकता हूँ, ऐ पहाड़ हट जा, तो वो कभी नहीं हटेगा। यकीन नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने कहा है, ये होना चाहिए था। बल्कि सबसे पहले आपको खुदा की मर्जी को जानना चाहिए। यही सबब है कि अक्सर दुआया कतार में ये होता है और मुझे काफी मुश्किल होती है, और इसका सबब ये होता है कि कतार में कुछ हो रहा होता है और वगैरह वगैरह, और यही है जहाँ से आपको वापस आना होता है। लेकिन देखें, अगर आपने गुनाहों का इकरार नहीं किया है, क्या आपने कभी ऐसे केस पर ध्यान दिया है? इससे पहले कि मैं बुरी रूह से कहूँ इसे छोड़, मैंने हकीकत में यकीनन ऐसा केस देखा है कि जिंदगी में कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो जिंदगी मजामत करती है। तो फिर देखें, याद रखें, ये नेमते हैं जो आपने हासिल की होती हैं और उनके लिए मुश्किल का सबब बन सकती हैं। खुदाया, आपको याद है एक मर्तबा एक नबी था, एक इंसान मूसा जिसको नबी बनाया गया था, उससे कहा गया था वहाँ उस चट्टान से कहना। वो नबी वहाँ गया और वो बहुत ही बेताब था। वो वहाँ गया और चट्टान को मारा और ये बताया कि मसीह कमजोर है और वो फिर दोबारा मारा जाएगा या दूसरी बार अपनी जान देगा। उस कुवत से पानी तो निकल आया, मगर ये खुदा की मर्जी नहीं थी। मैं कभी भी ये यकीन नहीं कर सका कि ये खुदा की मर्जी थी कि एलिया वहाँ जाता और बच्चे उसे गंजे सर वाला कहकर चढ़ाते, और मेरा ख्याल नहीं कि उसे ये करना चाहिए था, मगर वो एक नबी था और वो गुस्से में आ गया और उन बच्चों पर लानत की और दो रिछनियाँ वहाँ से निकली और 42 बच्चों को खा गई, समझे। लेकिन मेरा ख्याल नहीं कि उसे ये करना चाहिए था। और ये फक्त फक्त हम खुदाया, मेरा आज ये ईमान है, इससे पहले कि खुदा ने अपनी कलीसिया में अपनी कुव्वत को रखा, उसने पहले देखा कि उसकी कलीसिया क्या करेगी। हम अगली मर्तबा, हो सकता है अगर खुदावंत की मर्जी हुई और जब मैं वापस आऊंगा, तो हमारे पास वक्त होगा कि ऐसी बात को हासिल करें जो होने के लिए तय हो चुकी है, और फिर हम मजीद इसके बारे में जानेंगे। लेकिन आप फक्त कलाम बोलें और कहें, खुदावंत मैं इस पर ईमान रखता हूं और इस पर शक ना करें और इसकी अहमियत आपके दिल में हो। अब मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ, मैं एक वादी में हूँ और मुझे नहीं पता, मैं लाखों लोगों में मुनादी कर रहा हूँ, लेकिन पहाड़ की दूसरी जानिब 100 लोगों का ग्रोह है और वो मसीह को जाने बगैर ही मर रहे हैं। लेकिन ठीक, मैं यहाँ लाखों लोगों में मुनादी कर रहा हूँ, लेकिन अचानक कोई चीज मेरे दिल में ये बात डालती है, उस पार उन लोगों के पास जा, उनके पास जा, वो मर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ जाऊँ, मगर मेरे अंदर कुछ है। देखें, फिर यही खुदा है जो हरकत कर रहा है। देखें क्या मनसूबा है, देखें वहाँ जाने का क्या मकसद है, अपने लिए नहीं है। अब अगर मैं कहूँ ठीक है, अगर मेरा मंसूबा वहाँ जाने का ठीक है और मैं वहाँ चला जाता हूँ, और वहाँ एक बड़ा पहाड़ है। मैं कहता हूँ, आप जानते हैं, अगर मैं इस पहाड़ को हटा दूँ और इन 100 लोगों को बचा लूँ तो किसी दिन ये मेरा मुजस्मा बना लेंगे कि भाई ब्रैनम बहुत बड़ा मिशनरी था, तो फिर मेरा मकसद ठीक नहीं है। पहाड़ नहीं हटेगा, नहीं जनाब। लेकिन जब मेरा मकसद और मंशूर ठीक है और खुदा मेरे दिल में है और मेरी रहनुमाई कर रहा है, मैं पहाड़ को नहीं हटा सकता, तो मैं पहाड़ के चौगिर्द और पहाड़ के नीचे खड़ा होकर कहूँगा, ए पहाड़ हट जा, तो हो सकता है। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ और हो सकता है मेरे कहने से ज्यादा ना हो, मैंने तो खुदा की मर्जी से ठीक रूह से और पाक रूह की रहनुमाई से कहा और हो सकता है वो पहाड़ जरा सा भी हटा ना हो, मगर काम जारी है। हो सकता है अगले दिन थोड़ा सा हट जाता है, उससे अगले दिन टन से तीसरा हिस्सा हट जाता है, और हो सकता है एक महीने में 5 टन हट जाता है। तो ये क्या है? हो सकता है ये अभी तक नजर ना आ रहा हो, लेकिन ये हरकत कर रहा है और काम हो रहा है। मैं तो इसके साथ खड़ा हूँगा और काम करते हुए देखूंगा, क्योंकि ये खुदा ने कहा है और ये तय है। क्या आज रात तुम अपनी माँ के बारे में ये सोच सकते हो? ठीक है, अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो वह तंदुरुस्त हो जाएगी। ये सच है, यही है जिस पर आपको ईमान रखना है। बस कलाम बोलें और इसके साथ खड़े रहें, समझे? फक्त एतकाद रखें और इसके साथ लिपटे रहें, यही अब्दि जिंदगी है। अब कल दोपहर, बल्कि मैंने आज रात बिली को बताया था कि दुआया कार्ड तरक कर दे, क्योंकि मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ये सच कह रहा हूँ, मैं जनवरी से बैरून मुल्क जा रहा हूँ और फिर ये सब कुछ पूरा करके वापस सीधा अपने घर फिनिक्स में आऊँगा। ख्यालों को परखना मुझे बहुत कमजोर कर देता है। मैं मुश्किल से भी जान पाता हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। बस ये मुझे कोड़े मारने के बराबर है और मुझे यहाँ जाना होगा, मगर वो आप भाइयों ने मुझे यहाँ कुछ और दिन रुकने की दावत दी हुई है। इसके लिए मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ और यकीनन मेरा ख्याल है कि खादमों का अलग ग्रोह है जो यहाँ मौजूद है, और हमारी ये ख्वाहिश थी कि हमारे पास रफाकत के लिए और ज्यादा वक्त होता। अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो मैं वापस यहाँ कुछ वक्त के लिए आऊँगा, किसी और काम के लिए नहीं, बस एक चर्च से दूसरे चर्च और सारे शहर में आप सबसे मुलाकात करूंगा, और मुझे ये मुलाकात करके खुशी होगी, ताकि मैं भी खुदा की बादशाही के लिए कुछ कर सकूं। यही है जो आप चाहते हैं मैं आपके लिए करूं, और कुछ वक्त निकालकर वापस यहाँ आएं और हमारे साथ शामिल हों। ये अच्छा वक्त और अच्छी इबादत यहाँ पर होंगी। और भाइयों, ये याद रखें कि एक बात पक्की है और वो ये है कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, आप सब। और अब मेरी कल सुबह से इस चर्च में और इस शहर के मुख्तलिफ अच्छे चर्चेज में इबादत हैं। अब कुछ ग्रो जेफरसन विल से भी यहाँ आए हुए हैं, उनमें से कुछ मेरे दोस्त हैं, और मेरे चर्च का एक ट्रस्टी भाई फ्रेड सोथमैन भी यहाँ आया हुआ है। मैं उसे भी अभी तक इबादत में कहीं देख नहीं पाया। और भाई और मेरे बहुत सारे दोस्त जेफरसन विल से यहाँ आए हुए हैं, और मेरा सेक्रेटरी और बाकी सब यहीं कहीं इबादत में मौजूद हैं, मगर मैं उन्हें अभी तक देख नहीं पाया। और भाइयों, यहाँ इस शहर में अच्छे चर्चेज मौजूद हैं, और आप जो जायरीन हैं कल इन तमाम चर्चेज से किसी एक में जा सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो आपसे अच्छा बर्ताव करेंगे। वो ऐसे भाई हैं जो इस किस्म की खिदमत पर ईमान रखते हैं, यही सबब है कि वो यहाँ मंबर पर बैठे हुए हैं और कुछ यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो इस पर ईमान रखते हैं, और मैं ऐसे भाइयों की तारीफ करता हूँ। खुदावंत यहाँ इस फुल गॉस्पल बिजनेसमैन वालों को बरकत दे जिन्होंने इस इबादत के खर्च को बर्दाश्त किया है। ये बहुत मर्तबा मेरे कफील रहे हैं, क्योंकि यहाँ बाज़ औक़ात भाइयों में छोटे छोटे इख्तलाफात होते हैं। एक शख्स थोड़ा फर्क ईमान रखता है और दूसरा थोड़ा फर्क। हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक किस्म के पुराने जख्म और एक छोटी सी रगड़ होती है, मगर इस वक्त इसे शिफा याब होना चाहिए। लेकिन ये और अगर आप या अगर मैं इस फुल गॉस्पल बिजनेसमैन की मदद लेता हूँ, तो फिर ये मरहम पट्टी है और हमें इकट्ठा रखती है, ताकि हमारी हकीकी रफाकत हो और अच्छा वक्त गुजरे, और हम इसकी कदर करते हैं। खुदा इस रफाकत को बरकत दे। मेरा ईमान है खुदा ने इसे किसी खास मकसद के लिए उठा खड़ा किया है। अब और फिर एक दिन मुझे ये बड़ा शर्फ हासिल हुआ कि मैंने भाई ओरल रॉबर्ट्स के यहाँ जाकर उससे मुलाकात की। मेरे खुदाया, वो ऐसा बड़ा मकाम है और एक खूबसूरत जगह है, वो पेंटिकोस्ट की यादगार है। फिर मैं भाई टॉमी ओसबोर्न से मिलने के लिए गया, ये एक और शानदार जगह है और वो आला खुदा का खादम है, और भाई टॉमी और मैं बहुत करीब हैं, और भाई ओरल भी, बस हम हकीकी और करीबी भाई हैं, और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करते हैं कि हर वो अच्छा काम लोगों के लिए कर सके जो खुदा की बादशाही के लिए है। बस मैं यकीनन इन लोगों की तारीफ करता हूँ जो इस शहर में उन बाकी अच्छे भाइयों के साथ रहते हैं जो आपके दरमियान हैं। आप बेड़े अच्छे चरवाहे हासिल कर चुकी हैं। मैं तो फक्त यही कहना चाहूँगा और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद हमेशा आप सबके साथ हो। और अब कल दोपहर मेरा भाइयों किस वक्त इबादत शुरू होगी? 2:30 पर। और मैं कहता हूँ 1 या 1:30 बजे आपको यहाँ होना चाहिए ताकि इनकी दूसरी इबादत में मुदाखलत ना हो। अब अगर लड़कों ने आपको अभी तक नहीं बताया तो आज रात उनके पास किताबें, तस्वीरें, टेप और रिकॉर्ड मौजूद होंगे और इन इबादत में वो इन्हें सेल करेंगे, मगर हम उन्हें कल सब्बत पर इन चीजों को फरोख्त करने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई किताब और कुछ भी कल फरोख्त नहीं होना चाहिए। बस हम कभी कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अगरचे बहुत सारे कहते हैं तुम बिल्कुल गलत हो, मेरे बुजुर्ग बाप बोसवर्थ अक्सर मुझे कहा करते हैं ओ भाई ब्रैनम तुम यहाँ पर गलत हो, लेकिन मैं इसी तरह महसूस करता हूँ, समझे? मैं महसूस करता हूँ। और अगर आपको एक चाहिए तो वो आपको एक दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको तो हम इन्हें सब्बत पर फरोख्त करने नहीं देंगे। ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इस पर ईमान रखता हूँ तो मैं इस तरह जीना चाहता हूँ, तो बस मुझे इसी तरह जीने दें, आप समझ गए? और मुझे मेरे अकीदे के साथ रहने दें, और बस। या आप इन्हें घर भेज सकते हैं और ये घर से या उस मकाम से ले सकते हैं। अब आज रात हो आए सब कुछ भूल जाए, हो जो काम होने वाले हैं या जो कुछ भी है, ये सारे दिन की सख्त मेहनत है। आए सब कुछ एक तरफ रख दें और थोड़ी देर के लिए कलाम पर नजरें लगाएं और देखें कि खुदा अपने कलाम के वसीले हमसे क्या बात करता है। और मैं दुआ करता हूँ कि काश आज रात हमें अपने कलाम की अजीम और आला बरकात से नवाजे। जीन, क्या तुम मेरे लिए इसको पकड़ सकती हो? क्या तुम मेरे लिए इस नन्ही बच्ची को पकड़ सकती हो? क्या ये नन्ही बच्ची खूबसूरत नहीं है? क्या तुम मेरे साथ इस आला मकाम से मेरे घर चलोगी ताकि मेरी सारा के साथ खेल सको? ओ, तुम चलोगी और मैं चाहूँगा कि तुम चलो। वो तुम्हारे जितनी है और डैडी की प्यारी बच्ची है। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम भी अपने डैडी से प्यार करती हो, क्या नहीं करती? मम्मी से? ओ, यकीनन तुम करती हो। ये बहुत ही खूबसूरत नन्ही बच्ची है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। दो आंखें कंबल में से दो गहरे सुराखों की तरह और सुनहरे बाल नजर आ रहे हैं। मैं छोटे बच्चों से प्यार करता हूँ और मेरी भी दो छोटी बेटियाँ घर में हैं। उनमें से एक रबेका और दूसरी सारा है। बाज़ औक़ात मैं घर से दूर होता हूँ और आप जानते हैं ये दोनों डैडी की छोटी बेटियाँ हैं और मैं इनसे प्यार करता हूँ। जैसे ही वो मुझे घर में पाती हैं तो फिर मैं उन्हें अपनी कमर पर झूले देता हूँ। और बेकी इसके लिए काफी बड़ी है, वो मेरी तरह बड़ी है, वो तो अब मेरी कमर ही तोड़ देगी। लेकिन वो अब भी डैडी की नन्ही बेटी है। और अब हम चाहते हैं कि एक साल के लिए उसे पब्लिक स्कूल की बजाय किसी बाइबल स्कूल में भेज दें। और आप जानते हैं फिर वो डैडी का इंतजार कर रही होती है कि वो घर आए। मैं इबादत में नहीं था और कल रात वो आधी रात तक मेरा इंतजार करती रही। और बस मैं सुबह सवेरे तकरीबन 3 या 4 बजे पहुंचा था और उनकी माँ ने दरवाजा खोला और मैं अंदर गया और मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था और अफसुर्दा था। मैं यहाँ पुलपट पर मैं और जब मसा आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब मसा आपको छोड़ देता है तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। कितने इस बात को जानते हैं? क्यों? क्योंकि ये सच है। देखें, एलिया पहाड़ पर चला गया और आसमान से आग मांगी, फिर आसमान से बारिश मांगी, और फिर जब रूह ने उसे छोड़ दिया तो फिर वो 40 दिन जंगल में घूमता रहा और खुदा ने उसे किसी घर में छुपा दिया। यूना, वो नीचे चला गया और 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, फिर उसे किनारे पर उगल दिया गया और वो मुनादी के लिए चला गया और पूरे शहर ने तौबा कर ली और खुदा के पास आ गए। लेकिन जब मसा उससे अलग हो गया तो वो एक पहाड़ पर चढ़ गया और खुदा से कहा मेरी जान निकाल दे, समझे? ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि मैं विलियम कोपर की कब्र पर खड़ा था। उसने ये मशहूर गीत लिखा था जो हम पाक ईशा की इबादत में गाते हैं, यहाँ एक चश्मा है जो लहू से भरा है, जो इमैनुअल की नसों से बहता है, जहाँ गुनाहगार डूबकर गोता लगाते हैं। क्या आपने कभी उसके बारे में सुना है? उसने क्या किया? जब तहरीक ने उसे छोड़ दिया तो उसने एक दरिया में जाकर खुदकुशी कर ली। मैं पुराने केंटकी के घर की तरफ रहता हूँ और स्टीफन फोस्टर अमेरिका के बहुत ही मशहूर लोक गीत गाने वाले हैं। जब तहरीक उस पर थी तो उसने तहरीक में एक गीत लिखा और जब वो तहरीक उससे जुदा हो गई तो वो शराब नोशी करने लगा और फिर आखिरकार उसने अपने नौकर को बुलाया और उस्तरा लिया और खुदकुशी कर ली। लोग नहीं जानते हैं कि कैसे लोग रूहानी दुनिया में रह रहे होते हैं। अब यहाँ आप महसूस करते हैं कि आप पहाड़ को हटा सकते हैं, लेकिन पहले अपने आप से मसा को जारी होने दें और इस दरवाजे से शुरू करें। अगर वहाँ आपको पकड़ने के लिए कोई नहीं है समझे? और फिर हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ये मुश्किल लगे और आप हैरान हो कि आप कहाँ हैं, और फिर कुछ रातों के बाद ये आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। और बच्चों, मैं तुम्हें सारा और रबेका के बारे में बताना चाहता हूँ। अगली सुबह मैं सो नहीं सका, मैं उठ गया और कुर्सी पर बैठा था, और थोड़ी देर बाद बेकी, जो कि बड़ी वाली है, उसकी टांगें भी सारा से बड़ी हैं, और बेकी भागती हुई आई, खड़ी हुई और पलंग पर छलांग लगा दी। शुक्र है अपनी बहन सारा पर नहीं चढ़ गई, और वो इस तरह तेज दौड़ती हुई आई जितना तेज वो दौड़ सकती थी। वो कह रही थी, डैडी डैडी, और मेरी एक टांग से आकर लिपट गई और बहुत अच्छी तरह से मुतवाजन में उछलने कूदने लगी, आज की इस जदीद कलीसिया की तरह। आप जानते हैं, ये भी बड़े अरसे से ये खेल कूद कर रही है, और आप जानते हैं, इसी तरह कई सौ साल गुजर गए हैं। रबेका ने अपने आप को ठीक मुतवाजन में रखा, उसने बाजू मेरे गले में डाले और कहा, ओ मेरे डैडी, ओ मेरे डैडी, और छोटी सारा उठकर शोर शराबा करने लग गई। भाई, मुझे नहीं पता कि आपके बच्चे इस तरह करते हैं या नहीं, मगर मेरे बच्चे करते हैं। छोटी वाली ने मेरा हाथ पकड़कर नीचे रख दिया, और बस सारा के पास बेकी का पजामा था, और आप जानते हैं उसकी टांगें लंबी हैं, और वो आई और वो छोटी बच्ची ठोकर खाकर गिर गई। बस बेकी मुड़ी और कहा, सारा मेरी बहन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसने कहा, मैं यहाँ पहले पहुँची हूँ और मेरी अजारादारी है, बस पूरे का पूरा डैडी मेरा है और तेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। और इसी तरह बहुत से लोग मजहब के बारे में सोचते हैं, क्या ऐसा नहीं है? ओहो, ये सच है। और बेचारी सारा अपना छोटा होंठ लटकाए हुए अपनी स्याह आंखों से मुझे देख रही थी, और उसने रोना शुरू कर दिया, और बेकी अपने गाल मेरी गाल से लगाए मुझे गले मिल रही थी। मैं उससे प्यार करता हूँ। और सारा ने दूर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पूरा डैडी बेकी का था। मैंने दूसरा घुटना जल्दी से आगे कर दिया और सर से उसे यूं इशारा किया, और उसने फौरन मेरे घुटने से छलांग लगाई। बस वो ज्यादा देर दूर ना रही, क्योंकि उसकी छोटी टांगे फर्श तक नहीं जा रही थी। वो एक तरह से डगमगा रही थी, आप जानते हैं, जैसे मैं शायद डगमगा जाता हूँ, और वो नहीं, वो फर्श तक नहीं पहुँच पा रही थी। वो कोई बड़ी तंजीम नहीं थी, आप जानते हैं, और वो उस ठोस फर्श पर नहीं पहुँच पा रही थी, क्योंकि उसकी टांगे लंबी नहीं थी, और बस वो डगमगा रही थी। और मैंने अपने दोनों हाथ उसके चौगिर्द फैला दिए और उसे करीब लाकर गले से लगा लिया। उसने अपनी छोटी स्याह आंखें घुमाई और मुड़कर रबेका की तरफ देखा और कहा, रबेका मेरी बहन। उसने कहा, ये सच है कि पूरे का पूरा डैडी तूने संभाल लिया, लेकिन मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ कि डैडी ने पूरे का पूरा मुझे संभाल लिया है। बस इसी तरह खुदा ने मुकम्मल तौर पर मुझे संभाला हुआ है। हो सकता है कि मैं अपनी तालीम की कमी की वजह से बड़ी बड़ी बातें ना कर सकूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उसने मुकम्मल तौर पर मुझे संभाला हुआ है, और मेरे डगमगाने की वजह से उसने अपने दोनों हाथ मुझ पर फैला दिए हैं, और यही बात मुझे मुतमिन करती है। ठीक है, आए, इससे पहले कि हम कलाम को लें, हम एक और छोटा सा लफ्ज उसके हजूर पेश करते हैं। अब ए आसमानी बाप, हम महसूस करते हैं कि हम छोटे बच्चों की तरह हैं, और तू हमसे प्यार करता है और हमारे साथ मिलकर प्रस्तिश करता है। हम तेरी प्रस्तिश करते हैं, और तू हमसे प्यार करता है और हमें अपनी बाहों में संभाल लेता है, और पाक रूह को हम पर अंडेलता है, और हम जानते हैं तू जिंदा है और हमारा बाप है, और हम इस बात के लिए तेरे बहुत शुक्रगुजार हैं। अब आज रात पाक रूह को हम पर आने दे। ए खुदावंद, हर दिल में मोहब्बत भर दे और हमें ताज़ा बरकत दे। ए बाप, हम पर अपने रहम के ओस के कतरे बरसा। हमारे गुनाहों पर नजर ना कर, हमारे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। खुदावंद, हमें माफ कर दे। ए बाप, इन्हें तरक कर दे और हमें अपनी बाहों में संभाल ले, और हमें शिफा दे, और हमारी रूहों को साफ कर दे, और हमारी रूहों को आज़ाद कर दे, ताकि ए खुदावंद हम तेरी तारीफ और तमजीद कर सके। और जिस तरह बच्चे अपने घर में भागते दौड़ते हैं ये जानते हुए कि उनका बाप उन्हें देख रहा है, खुदावंद ये बख्श दे। अब कोई शख्स इस लायक नहीं है कि कलाम की तफसीर कर सके। हम देखते हैं, यूहन्ना ने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो तख्त पर बैठा हुआ था, और ना कोई आसमान पर, ना ही जमीन पर, और ना ही कोई शख्स जमीन के नीचे मिला जो इस किताब पर नजर करने के लायक होता या मोहरे खोलने के लायक होता। और वहाँ पुनाए आलम से जबा किया हुआ बड़ा आ निकला, और वो इस लायक था, उसने मोहरें तोड़ी और इस किताब को खोला। ए बर्रे, आज रात तू आ और इस किताब को हम पर खोल दे। ए बाप, हम तेरा इंतजार करते हैं, और खुदा के बर्रे यस्सु के नाम में हम ये मांगते हैं, आमीन। आज रात मैंने इस छोटी सी ऐत के तीन अल्फाज को चुना है, लेकिन मैं पहले मुकद्दस यूहन्ना की अंजील से एक या दो आयात पढ़ना चाहता हूँ। आए 11वें बाब की 23वीं आयत से शुरू करते हैं।
Jesus said unto her, Thy brother shall rise again.
यीशु ने कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि कयामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, कयामत और जिंदगी मैं हूँ, और जो कोई मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंत, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो आने वाला था तू ही है। और इस हवाले से मैं जो उन्वान लेना चाहता हूँ वो ये तीन अल्फाज हैं। क्या तू इस पर ईमान रखती है? कुछ अरसा पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। मेरा ख्याल है वो एक फर्जी कहानी थी, और मेरा अंदाजा है कि तकरीबन तमाम खादमों ने डॉक्टर इंग्राम की किताब दाऊद के घराने का शहजादा पढ़ी होगी। ये अच्छी किताब है, और मेरा ख्याल है कि ये अब बिल्कुल नहीं छप रही, लेकिन मैं इसे छपवाना और लोगों में तकसीम करना पसंद करूंगा। और इस किताब में मैं एक छोटा सा मजमून पढ़ रहा था जो यीशु और लाजर पर था, और जिसमें लाजर की बहनों मरियम और मार्था का भी जिक्र था। और मैं इस किताब में पढ़ रहा था जहाँ यीशु रहता था, मेरा ख्याल है मरियम और मार्था भी वहीं रहती थी। वो दोनों अच्छी अब्रानी लड़कियाँ थी, और लाजर हैकल में तरबियत लेने या तहरीर सीखने जाता था ताकि शरीयत के लफ्जों को काहिनों के लिए तैयार कर सके। और यीशु की लाजर के साथ एक खास और अच्छी रफाकत थी। और फिर हम इस किताब में पढ़ते हैं कि जब यीशु उनके घर आया तो मार्था उसका कलाम सुनने में थोड़ी सी सुस्त थी, और वो खाना तैयार करने में लग गई ताकि दस्तरखान तैयार करे, मगर मरियम उसके कदमों में बैठ गई। और यीशु ने कहा, मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। और फिर हमें डॉक्टर इंग्राम की किताब में ये बताया गया है कि वो लाजर ही था जो यूहन्ना को यीशु के पास लाया था, और ये दाऊद के घराने के शहजादा में मौजूद है। और हो सकता है कि ये सच ना हो, मुझे नहीं पता, मैं तो बस पस से मंजर ले रहा हूँ। फर्ज करें कि यीशु उनके साथ रहता था। अब हम पिछले हफ्ते इस आमद पर सीख रहे थे, बजाय इसके जो यीशु ने यूहन्ना 5:19 में कहा, मैं बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जो बाप को करते देखता है, बेटा भी उसी तरह करता है। बाप अब तक काम करता है और बेटा भी काम करता है, समझे, जो वो बाप को करते देखता है। बस इस कहानी को सच्चा साबित करने के लिए खुदा बाप अपने बेटे यीशु से बात करता है और कहता है, तेरा दोस्त लाजर मरने को है, लेकिन ये भलाई के लिए ही होगा, बस तू घर से निकल जा, दूर चला जा, क्योंकि वो तुझसे दुआ करवाने आएंगे ताकि वो ठीक हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि तू ये करे। अगर आप इस कहानी पर जिसे हम लेकर चल रहे हैं गौर करें तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सच है। बस यीशु बगैर अतला किए या बताए कुछ घर से निकल गया और कहीं और चला गया, और उस रात वापस ना आया, वो किसी और इलाके में चला गया। और जैसे ही यीशु ने उस घर को छोड़ा तो मुसीबत उस घर पर टूट पड़ी। जब यीशु आपके घर को छोड़ता है तो मुसीबत तैयार खड़ी होती है। बस याद रखें, जब यीशु आपके घर को छोड़ता है तो मुश्किल तैयार खड़ी होती है। जब आप मुकम्मल तौर पर समाजी संगत और बाकी सब कुछ अपने चर्च में करने लगते हैं, तो ये उस बहुत बड़ी 16 सिलेंडर रेकन बैकर की तरह है, और फिर आप यीशु को बाहर निकाल देते हैं, और जब यीशु आपके चर्च से चला जाता है तो फिर मुसीबत तैयार खड़ी होती है। जी हाँ जनाब, जब यीशु एक तंजीम को छोड़ता है या वो उसे एक तरफ कर देते हैं और कहते हैं ठीक है, लेकिन हम इन बातों पर ईमान नहीं रख सकते, ये बिल्कुल ठीक है, और आप कुछ और अपना लेते हैं, तो फिर मुसीबत तैयार खड़ी है। बस ये याद रखें। मुझे खुदावंद यीशु की वो कहानी याद आ रही है जो लूका की इंजील में पाई जाती है। आप जानते हैं, जब वो फक्त 12 बरस का था तो वो अपने लोगों के साथ ईदे पेंतेकोस्त पर अपने दस्तूर के मुताबिक गया, जैसे वो हर साल जाते थे। और जब वो यरूशलम शहर में ईद की खुशियां मना रहे थे, तो हम बाइबल में देखते हैं 3 दिन से यीशु उनके साथ नहीं था। और हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि शायद यीशु उनके अजीजों के साथ है, वो उनके सुपुर्द किया गया था। अब देखें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब उन्होंने अपने अजीजों के यहाँ जाकर तलाश किया तो वो वहाँ नहीं था। वो हमें इसलिए नहीं अता किया गया कि हम मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और पेंतिकोस्त हैं, और हमारा पस से मंजर ये है, और हमारे बाप दादा ईमानदार थे, हम इसलिए इसे लेते हैं, वो ठीक है, ये हमें अता किया गया है और यीशु हमारे साथ है। हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें उसे इस तरह हासिल करना चाहिए कि हर रोज और हर लम्हा उससे राब्ते में रहें। ओ, मैं इसे पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ अब उसे जाने कि खुदा क्या है, मेरे वालदेन क्या थे, मेरे बाप दादा कितने अच्छे थे और उन्होंने क्या अच्छा किया। मेरा ख्याल है अब हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। आए देखें कि वो आज क्या है। मैं नहीं चाहता कि पीछे मुड़कर देखूं कि मिस्टर मूडी ने क्या किया था, क्योंकि अब हम उससे आगे निकल चुके हैं जो मिस्टर मूडी ने किया था। हमारी कलीसियों के साथ ये मसला है कि हम पीछे देखते रहते हैं और कहते हैं भाई आए देखते हैं कि मिस्टर जॉन वेस्ली ने क्या कहा था या दूसरों ने क्या कहा था। यही सबब है कि मजहब के मुकाबले में साइंस अपने काम में बहुत आगे निकल चुकी है। 300 साल पहले एक फ्रेंच साइंसदान ने यह साबित कर दिया था, अगर आप फी घंटा 35 मील की तेज रफ्तार से जाएंगे तो कशिश आपको जमीन से ले जाएगी। क्या आपका ख्याल है कि साइंस दोबारा इसकी तरफ रुजू करेगी? वो अब 1900 फी घंटा रफ्तार से जा रहे हैं और इस पर मजीद काम जारी है। वो आगे देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम पीछे देखते हैं और कहते हैं मूडी ने क्या कहा है, सेंकी ने क्या कहा है, फिंकी ने क्या कहा है, नोक्स, कैल्वन और बाकी सब ने क्या कहा है, और जो उन्होंने कहा है वो ठीक है, वो उनके जमाने के लिए था, लेकिन हम इस जमाने में रह रहे हैं। मेरा दादा बैलगाड़ी चलाता था, मैं फोर्ड V8 चला रहा हूँ, मेरा बेटा जहाज चलाएगा। इस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यही कुछ मजहब के साथ होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। अब कलीसिया को भी उसके इख्तियार में आगे बढ़ना चाहिए। साइंस एक बहुत बड़ी छलांग लगा सकती है और फिर गिर सकती है, लेकिन हमारे पास ऐसे ज़राए हैं जो लामहदूद खुदा की कुव्वत से हमें हासिल हुए हैं और उन्हें कोई छू नहीं सकता है, और हमें उन्हीं में बढ़ते जाना चाहिए। हम इस शर्फ के नीचे जो मसीहों को खुश रहने का शर्फ बख्शा गया है, आज रात हम लाखों मील इसमें चल सकते हैं। मैं अपने आप में पशेमान होता हूँ जब मैं इन अदारों और बीमारियों और मुश्किलात को देखता हूँ कि ये अब तक जारी हैं। अब हमारी कलीसिया को बाहर गलियों में निकल जाना चाहिए ताकि बीमारों को शिफा दें, बदरूहों को निकालें, मुर्दों को जिंदा करें और अजीब काम और निशान जाहिर हों ताकि पूरी दुनिया महसूस करे कि यीशु मसीह जिंदा है। बस यही कुछ है जो हमें करने की जरूरत है। क्यों आप कहते हैं मिस्टर मूडी कभी? मिस्टर मूडी इस जमाने में नहीं रह रहा, ये बिल्कुल सच है। हम खुदावंद की आमद के दिनों में रह रहे हैं, और क्या हमने उसे फक्त इसलिए पाया है कि वो हमारे अजीजों के साथ था? किसी रोज जब एक हरीफ ने मिस्टर ग्राहम को चैलेंज किया तो हमने देखा था कि यीशु अपने रिश्तेदारों में नहीं था। उन्होंने उसे कहाँ पाया? उन्होंने यीशु को कहाँ पाया? ठीक वहाँ जहाँ उन्होंने उसे खोया था। उन्होंने उसे कहाँ खोया था? ईदे पेंतेकोस्त पर। जब हम उस ईदे पेंतेकोस्त पर पुरानी पेंतेकोस्टल कुव्वत से अलग हो गए थे और हम यीशु से दूर चले गए थे। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है, हमें तो अपने इस शर्फ के नीचे रहना चाहिए था। जी हाँ जनाब, उन्होंने उसे ईदे पेंतेकोस्त पर खोया, और फक्त एक ही मकाम है जहाँ मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और पेंतेकोस्टल उसे हासिल कर पाएंगे। वापिस वहीं जाएं जहाँ आपने उसे खोया था। खुदावंद की खुशी कहाँ है? खुदावंद की कुव्वत कहाँ है? कलीसिया आज पूछती है तारीख के खुदा को क्या हो गया है, वो मंजर पर आने के लिए अपने लोगों की पुकार का इंतजार कर रहा है। मगर ये हम ये तंजीमों के वसीले नहीं कर सकते, हम ये नफ्सियात के वसीले नहीं कर सकते, हम ये तालीम के वसीले नहीं कर सकते और ना ही हिसाब किताब के वसीले कर सकते हैं। हमने अपने आप को अलग किया हुआ है, हम में तफरीक है, हम में तफरीक नहीं होनी चाहिए। हमें मसीह में एक शख्सियत होना चाहिए, मसीह में हम सब एक हैं। मगर हमारी तंजीमें कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। वो इतने अच्छे हैं कि वो ये नहीं करेंगे। हमारी तालीम ही अंजील की मुनादी में सबसे बड़ी रुकावट रही है। ये तालीम है, हमें किस चीज़ की जरूरत है? तालीम की नहीं, हमें तो वापस कलीसिया में पाक रूह की कुव्वत और कुदरत की जरूरत है, ताकि कुदरत जाहिर हो। यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि सारी दुनिया में जाओ और तालीम दो। उसने ये कभी नहीं कहा सारी दुनिया में जाकर ये करो, बल्कि उसने कहा सारी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो और अंजील की मुनादी जी उठने और पाक रूह की कुदरत से की जाए। जहाँ हमें होना चाहिए था, हम वहाँ से आज भी लाखों मील दूर हैं। आए आगे बढ़ें, आए हम वापस वहीं ईदे पेंतिकोस्त पर चलें, जहाँ हमने यीशु को खोया था। यीशु ने यूहन्ना में कहा, मेरा ख्याल है ये 15वां बाब है, उसने कहा अंगूर की हकीकी ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। अब ठीक, अगर इस ताक में से पहली डाली निकलती है तो वो एक और ईमाल की किताब लिखेगी, और दूसरी डाली दूसरी ईमाल की किताब लिखेगी, और तीसरी डाली एक और ईमाल की किताब लिखेगी, और इस ताक में से जो भी डाली निकलेगी वो पहली डाली की तरह ही होगी। अब हम जानते हैं कि आप इसमें पैवंदकारी कर सकते हैं। मैं एक संतरे के दरख्त में मुख्तलिफ 8 इकसाम के फल देख चुका हूँ। मैं संतरे के दरख्त पर लीमू और चकोतरे और ऐसे बहुत से फल देख चुका हूँ जो पैवंद किए गए थे। आज यही मसला दरपेश है, हमने इसमें अपनी तंजीमें और अपने ख्यालात पैवंद कर दिए हैं। अगर ये ताक कभी अपना असल फल निकालेगी तो वो ताक ही होगी, तो ये उसकी असल सूरत ही होगी जो कभी मौजूद थी। हालेलुया। हो कलीसिया आपस में मखलूत हो जाएगी, मगर हमें हकीकी कुव्वत की जरूरत है, हमें पाक रूह की जरूरत है जो यीशु मसीह के जी उठने की कुव्वत है। यही है जो उसने हमें करने को कहा है। मैं ताक हूँ, तुम डालियाँ हो। अगर एक अंगूर की ताक लगाई जाए तो उसमें से खूबसूरत नीले अंगूर ही निकलेंगे, और अगली ताक से भी खूबसूरत नीले अंगूर ही निकलेंगे। जब पहली ताक निकली तो वो पाक रूह के जेरे असर थे, और उन्होंने बड़े बड़े मौजज़े किए और निशान जाहिर किए और दुनिया के लिए अपनी गवाही को सरबा मोहर कर दिया। उनमें से बतेरों ने अपनी गवाही की खातिर अपना खून बहा दिया और अपनी गवाही को सरबा मोहर कर दिया। वो अंजील की खातिर हर किस्म के खतरों और मुसीबतों से गुजरे, वो सताए गए, वो मारे गए, उनको सजा दी गई। क्या हम अपने आसमानी घर में आसानी से फूलों की सेज से जाना चाहते हैं? जबकि इस इनाम को जीतने के लिए वो लड़े और खूनी समुन्दर में से होकर गुजरे, हमें किस चीज की उम्मीद रखनी चाहिए? अगर मुझे बादशाही करनी है तो मुझे लड़ना भी जरूर है। खुदावन मेरी हिम्मत बढ़ा। यकीनन मुझे इसकी जरूरत है। हमें नई तंजीम की जरूरत नहीं, हमें नई चर्च बिल्डिंग की जरूरत नहीं। आज हमें किसकी जरूरत है? एक पुरानी जंगली चमकती हुई पेंटिकोस्टल बेदारी की जरूरत है जो गुनाह को कत्ल कर दे। वही पैदाइश वापिस कलीसिया में होनी चाहिए जो पेंटिकोस्ट पर हुई थी। वापिस पाक रूह की कुव्वत होनी चाहिए जो यीशु को मंजर पर ले आए। तारीख का खुदा हमेशा नाजुक वक्त पर आ खड़ा होता है, हमें इसकी जरूरत है। हमारी कलीसिया के साथ आज यही मसला है। हम बहुत पीछे जा चुके हैं, हम दुनिया के फैशन में गिर चुके हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता साल ब साल मुरझा रहे हैं और मरना शुरू कर दिया है। कटाई का वक्त बहुत जल्द आ रहा है। जितना यकीनी तौर पर मैं इस मंबर पर खड़ा हुआ हूँ, खुदा इसे फिर काटेगा, खुदा इसे फिर छांटेगा ताकि ये फल लाए। इन्हीं दिनों में किसी दिन खुदा इसमें से सारी दुनियादारी को काट डालेगा, इस सारी रुसवाई को जो मजहब के नाम पर कलीसिया ने अपना ली है। हम देखते हैं जब यीशु छोड़ देता है तो फिर मौत आ जाती है। जब यीशु हमारी कलीसिया को छोड़ देता है तो पाक रूह की कुव्वत हमारी कलीसिया से अलग हो जाती है, तो फिर ये मुरझाना शुरू हो जाती है और मर जाती है, और फिर कुछ देर बाद इसके पास कुछ भी नहीं रहता। अब देखें, जब यीशु छोड़ता है तो फिर मौत आ जाती है। ओ, ये कितना दर्दनाक वक्त है। अब गौर करें, वो हैरान थे कि उन्होंने यीशु को बुलवाया मगर वो नहीं आया था। उन्होंने दोबारा उसे बुलवाया पर वो न आया, मगर वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। आज रात भी वो जानता है कि वो क्या करने वाला है। उसके होते हुए हम कुछ भी खो नहीं सकते हैं। वो अच्छी तरह जानता है वो क्या करने वाला है। वो कुछ लोगों को खड़ा करने वाला है, यकीनन जैसे मैं इस मंबर पर खड़ा हुआ हूँ। वो अपने नाम की खातिर गैर कौमों से लोगों को खड़ा करेगा, वो ऐसा ही करेगा। अब यहूदियों का वक्त करीब आ गया है और गैर कौम का इख्तिताम हो रहा है, क्योंकि ये बाहर निकल चुके हैं। ये मसीह को रद्द कर रहे हैं, ये अपने निशानों को रद्द कर रहे हैं, ये हर किस्म की खुदा परस्ती को रद्द कर रहे हैं, इस पर ये छाप लगा रहे हैं कि ये शैतान या किसी किस्म की टेलीपैथी है, और ये पाकरू के खिलाफ कुफर बक रहे हैं और खुदा से दूर होने के लिए अपने ऊपर मोहर लगा रहे हैं। खुदा इस अकलियत को ले लेगा और कुछ अरसे बाद इसे उठाकर एक ताकतवर कलीसिया बना देगा और फिर रूह यहूदियों की तरफ रुख करेगा और तब गैर कौम की कलीसिया अपने घर जा चुकी होगी। ये बिल्कुल सच है, अब ये तैयारी कर रही है। हो, हम कितने आखिरी वक्त के करीब आ चुके हैं। यीशु जानता था और कुछ देर बाद उसने कहा, हमारा दोस्त लाजर सो गया है, और शागिर्दों ने सोचा कि वो उसके आराम के बारे में बात कर रहा है। उसने कहा, ये दुरुस्त है, अगर वो सो रहा है तो वो ठीक ठाक ही है। देखें, फिर उसने कहा, वो उनके लफ्जों की वजह से, ताकि वो समझ जाएं, कहा वो मर गया है और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूँ कि मैं वहाँ नहीं था। देखें, मैं तुम्हारे सबब से खुश हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहना था उसे तंदुरुस्त कर दे, लेकिन वो जानता था उसने ये नहीं करना था, क्योंकि वो पहले ही रोया देख चुका था और चार दिन के बाद वो जानता था यही वो वक्त है जो बाप ने बताया था। ये कितना खूबसूरत है। उसने कब्र पर कहा, ए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, मगर मैंने इनके लिए कहा जो आस पास खड़े हैं। देखें, वो पहले से जानता था कि वो क्या करने वाला है। उसने कहा, मैं जाकर उसे जगाऊंगा। अब मैं तस्वीर कर सकता हूँ, वो घराना यकीनन टूट फूट चुका था, कफील मर गया था और दुख वहाँ था। ओ, ये बड़ा हैरत अंगेज होता है, जब आप कोई दुखी घराना या दुखी दिल देखते हैं तो फिर यीशु वहाँ आम मौजूद होता है, क्या ऐसा नहीं है? मैं तस्वीर में मार्ता को देख सकता हूँ कि वो एक खूबसूरत खातून है जो अपने चेहरे पर स्याह नकाब किए हुए है, और मरियम और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और कह रही हैं, हम कैसे जिंदा रहेंगी, माँ बाप पहले ही मर चुके थे और हमारा बेशकीमत भाई भी मर गया है और हम अपनी कलीसिया भी छोड़ चुके हैं और उनके साथ हमारा अब कोई रابطہ नहीं है। हम तो यीशु नासरी की पैरवी में वहाँ से निकले थे और उसने हमें वहाँ से निकाला था और यहाँ लाकर छोड़ दिया है। मैं सुन सकता हूँ कि नकाद वहाँ थे और कहा होगा, अरे कहाँ है वो इलाही शिफा देने वाला, वो गलील का नबी कहाँ है, अब वो कहाँ है? देखो, जब उसके काम करने का वक्त आया है कि वो कुछ करे तो वो गायब हो गया है। ये है वो। देखें, खुदा तो ये करना पसंद करता है, लेकिन बस वो लोगों को इजाजत देता है ताकि लोग जाहिर हो जाएं कि वो क्या हैं। जी हाँ, बस वो उन्हें देखता है कि वो दर हकीकत क्या हैं। वो तो उन्हें बरकत देना चाहता है, वो जाहिर होता है और अपना आप दिखाता है और अपना तारुफ लोगों में करवाता है, फक्त ये देखने के लिए कि किस किस्म का रद्द अमल लोग करेंगे। बस वो देखता है कि लोग उसके बारे में क्या करेंगे। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि लाजर मर गया और उस गरीब लाजर को मरे हुए चार दिन गुजर गए और उन्होंने उसे दफना दिया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, बल्कि चौथा दिन आ गया। अब हर कोई जानता है कि तीन दिन के बाद लाश सड़ना शुरू हो जाती है। चेहरे पर सबसे पहले नाक सड़ना शुरू होता है और फिर बदन सड़ना शुरू होता है और फिर जिल्द के कीड़े बदन को खाना शुरू कर देते हैं। वो उसे कब्र में रखा है और उस कब्र के मुंह पर एक पत्थर रख दिया जहाँ उसे रखा था, और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो नौजवान लड़कियां कब्र पर जाकर घुटने टेक कर रोती होंगी। और कुछ देर बाद ये खबर मिली, यीशु आ गया है। हम देख सकते हैं कि वो किस तरह शहर में दाखिल हुआ होगा। ओ, मार्था जो कि बहुत ही टाल मटोल करने वाली लगती थी, तब उसने साबित कर दिया कि वो क्या बन गई है। फिर वो उसकी तलाश के लिए सड़क पर निकल आई। मैं सुन सकता हूँ कि उनमें से कुछ लोगों ने सड़क पर कहा होगा, ठीक है, अब मेरा ख्याल है तुम्हें मुतमिन हो जाना चाहिए कि तुम्हारा दिन गलत था। उसने उन तमाम नकादों पर तवज्जो ना दी और सीधा आगे बढ़ती गई, और हो सकता है वो किसी गली के कोने पर जाकर बैठ गई हो जब तक उसने यीशु को देख ना लिया। अब ऐसा लगता है उसने, बल्कि उसे ये हक हासिल था कि वो यीशु को मलामत करती या उसके खिलाफ सख्त अल्फाज बोलती। क्यों उसने ऐसा नहीं किया और कहा, तुम्हें यहाँ देखा, तुम्हें वहाँ देखा, तुम तो एक नबी हो और खुदा के बंदे हो, तुम तब क्यों नहीं आए जब हमने तुम्हें बुलाया था? हम पूरे इलाके के लिए अब क्यों मजाक बने हुए हैं? तेरी पैरवी की वजह से हम चर्च से भी बर्खास्त हो चुके हैं। ऐसा लगता है उसके पास ये कहने का हक था। और आप जानते हैं, मैंने इस पर मुनादी भी की थी, बर्रा और कबूतर, अगर हम एक बर्रा हैं तो बर्रा अपने सारे हकूक कुर्बान कर देता है, और ये बिल्कुल सच है। उसके पास ऊन के अलावा कुछ नहीं होता, बस वो भी कुर्बान कर देता है। आप अपने तमाम हकूक खुदा की खिदमत के लिए कुर्बान कर दें, ये बिल्कुल सच है। मैंने रास्ते में जाते हुए कुछ खवातीन को देखा जो पुराने छोटे लिबास में मलबूस थी। आप जानते हैं, उन्होंने कहा, अरे हम अमेरिकन हैं, हम जो चाहें कर सकती हैं। मैंने कहा, ये बिल्कुल सच है, लेकिन अगर आप बड़े हैं तो आप अपने हकूक कुर्बान कर देंगे। सिगरेट नोशी और इसी तरह के बाकी काम, ये काम खवातीन के लिए बहुत बुरे हैं। ये बिल्कुल सच है। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि एक खातून ने मुझसे कहा, जब वो मुझसे बात कर रही थी, कहा लेकिन भाई ब्रहनम वो अच्छे लिबास नहीं बनाते हैं। मैंने कहा लेकिन वो अभी तक अच्छी सिलाई मशीनें बनाते हैं और फरोख्त करते हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये बिल्कुल सच है। याद रखें, किसी दिन हो सकता है आप अपने शोहर की वफादार हों, लेकिन यकीनन आपको इस जनाकारी का हिसाब देना पड़ेगा। जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जना कर चुका। आज पेंटिकोस्टल खवातीन के साथ क्या मसला है? और मैं इस पर हैरान होता हूँ, आप कितना उस पुराने रहन सहन से दूर जा चुकी हैं। आपकी माएँ अक्सर लंबे बाल रखती थी और आज पेंटिकोस्टल खवातीन के चेहरे ऐसे रंगे हुए हैं जैसे मार्दी ग्राज के झुंड होते हैं। उनकी तरह बाल कटे हुए हैं और मुख्तसर लबास में मलबूस हैं, जिस तरह बाकी तमाम लोग हैं। मैं मर्दों की तरफ आ रहा हूँ, उठो और दोपहर के वक्त सारी बड़ी हुई घास काट दो। क्या आपको एहसास हो रहा है? बहनों, आपको इन मर्दों के साथ जनाकारी का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने आप को इस काम के लिए पेश किया है। ये एक बुरी रूह है जो कलीसिया के लोगों पर आ चुकी है और ये जानते तक नहीं, ये अंधे हैं और जानते तक नहीं। ये सच है। हो सकता है आप कहें एक मुबल्लग होते हुए मुझे ये हक नहीं है कि मैं ये कहूं, भाई मैं तो पाखरू की रहनुमाई महसूस कर रहा हूं। बस यही है जो मैं कह सकता हूं। आप अगर मैं आपको अदालत के रोज मिलूंगा तो आपका खून मेरे हाथों पर नहीं होगा। हर एक छोटी सी छोटी चीज जो शैतान की तरफ से है, उससे दूर हो जाएं, उससे दूर हो जाएं, उससे भागें। मुझे इसकी परवाह नहीं कि कितने टेलीविजन के स्टार हैं। आप यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि आप एक स्टार हैं, आप तो खुदा की बेटी हैं। मैंने एक सुबह एक पास्टर की कलीसिया में एक बूढ़े गुलाम पर मुनादी की थी। ये बहुत अरसा पहले की बात है, जब गुलाम फरोख्त किए जाते थे और उनकी अक्सर नीलामी लगती थी और वो वहीं से खरीदे जाते थे। वो गुलाम वहाँ रोते थे और वो चिल्लाते थे कि वो अपने घर चले जाएं, लेकिन अब उन्हें कभी भी घर वापस नहीं जाना था। वो उन्हें कोड़े मारते थे और वो उन्हें इस तरह खरीदते थे जिस तरह आप यहाँ एक गाड़ी खरीदते हैं या कोई भी चीज जिसकी कीमत देते हैं, मगर वहाँ इंसानों को फरोख्त किया जाता था। एक दिन एक खरीदार एक बहुत बड़े दलाल के पास आया। वो एक बहुत बड़ा शजरकार था और खरीदार ने कहा, आपके पास फरोख्त करने के लिए कितने गुलाम हैं? कहा, अरे मैंने तो उन्हें तबादले के लिए रखा हुआ है। वो उन्हें कद्दावर बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो उनके माँ बाप को लेते थे। अगर एक औरत या मर्द की शादी किसी कमजोर औरत से हुई होती थी तो वो उन कद्दावर मर्दों को लेकर नस्ल पैदा करते थे, जैसे घोड़ों और दूसरे जानवरों के साथ किया जाता है। ये बिल्कुल गलत था। खुदा ने इंसान बनाया और इंसान ने गुलाम बना दिए। इसका आगाज कभी भी ठीक नहीं था। खुदा नहीं चाहता कि कोई भी इंसान गुलाम हो। नहीं जनाब, ऐसा नहीं। देखें क्या हुआ। और फिर इसी दौरान खरीदार ने कहा, भाई मैं इनमें से कुछ खरीदना चाहता हूँ। खरीदार ने गौर किया कि उनमें एक नौजवान है जिसे उन्होंने कभी कोड़े नहीं मारे थे। उसकी जंजीर खोली गई, उसने सर उठाया और एक शरीफ आदमी की तरह चलने लगा। और उस खरीदार ने कहा, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा, लेकिन ये बराए फरोख्त नहीं है। खरीदार ने कहा, अरे क्यों? कहा, क्या ये बोस है? उसने कहा, नहीं, ये भी एक गुलाम है। कहा, अरे क्यों? तुमने इसे बाकी दूसरे गुलामों से ज्यादा पाला पोसा है? उसने कहा, नहीं, ये भी वही खाता है जो बाकी सब गुलाम खाते हैं, ये भी एक गुलाम है। कहा, कौन सी चीज है जो इस गुलाम को बाकी सब गुलामों से मुख्तलिफ बनाती है? मालिक ने कहा, काफी अरसा पहले मैं भी तजुब में रहा, लेकिन एक दिन मैंने ये खोज निकाला। इसका बाप अपने मुल्क में एक कबीले का बादशाह था, और अगरचे ये अपने घराने से दूर है और अजनबी है, तो भी ये अपने आप को बादशाह का बेटा ही समझता है और अपना चाल चलन वैसा ही रखता है। अगर ये एक अफ्रीकी महसूस कर सकता है कि उसका बाप बादशाह है और यहाँ इस अजनबी सरजमीन पर एक अजनबी की हैसियत से इस समुंदर पार रहते हुए भी वो नहीं भूला कि वो एक बादशाह का बेटा है, तो खुदा के बेटे और बेटियाँ होते हुए मर्दों और औरतों को अपना चाल चलन कितना दुरुस्त रखना चाहिए। ऐसा अमल करें, वाकई अपना चाल चलन ऐसा रखें, अपने आप को साफ रखें और खुदा के बेटों और बेटियों की तरह बर्ताव करें। कोई मसला नहीं, हालात कैसे हैं? हम यहाँ हैं। ओ, वो मार्था दौड़ती हुई आई और वो इस तरह लग रही थी कि वो यीशु के खिलाफ कुछ ना कुछ कहेगी। भाई आप क्यों नहीं आए थे? हमने आपके लिए क्या क्या किया और आपने हमें नीचा दिखाया? देखें, अगर उसने ऐसा कहा होता तो इस तरह क्या कहानी खत्म ना हो चुकी होती? नहीं जनाब, लेकिन इस तरीके से आप खुदा की इलाही नेमत तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अगर खुदा नेमत भेजता है और आप ठीक उस तक रसाई हासिल कर लेते हैं, अगर आप उससे कुछ हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर उस तक ठीक रसाई हासिल करें। और मार्था इस बात को जानती थी। शायद शुनीमी औरत और उसके बच्चे की कहानी उसने पढ़ी हुई थी, और वो अगर वो शुनीमी औरत जानती थी कि एलिया के अंदर खुदा है, तो फिर यीशु में कितना ज्यादा था। यकीनन बस उसने ठीक रसाई हासिल की, वो दौड़ कर गई और उसके कदमों में गिर गई। मैं ये पसंद करता हूँ, उसके कदमों में गिर गई और कहा, खुदावंद, यही उसका ठीक लकब है और यही कुछ वो था, ये उसका खुदावंद था। खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। ओ मेरे खुदाया, ओ मैं तस्वीर में देख सकता हूँ किस तरह उसने अपने फ्राक दिल के साथ उस खूबसूरत बहन पर, जिसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, नजर की होगी। कहा, खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। गौर करें, मार्था ने क्या कहा, लेकिन अब ऐ खुदावंद, वो मर चुका है और कीड़े उसके बदन में चलने शुरू हो गए होंगे, लेकिन तो भी ऐ खुदावंद, तू जो कुछ भी खुदा से मांगेगा खुदा तुझे दे देगा। ओ, यही भेद था। शायद आप कहें, मैं तो हर एक अस्पताल से होकर आ गया हूँ और डॉक्टरों ने कहा है तू मर जाएगा, लेकिन अब ऐ खुदावंद, मैं मुकम्मल तौर पर मजूर हो गया हूँ और जोड़ों के दर्द में हूँ और मैं चल नहीं सकता, लेकिन अब ऐ खुदावंद, कल रात उस छोटे बच्चे के सर में बहुत पानी था और आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, और अगर उसके छोटे सर को दबाया जाता तो उसने मर जाना था, लेकिन अब भी ऐ खुदावंद, वो आज भी वही खुदा है, वो आज भी वही खुदावंद है। अब ऐ खुदावंद, वो आज कादरे मुतलिक खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और इन बातों की शिफायत करता है जो हम उससे मांगते हैं ताकि वो हमारे लिए करे। अब मैं यकीनन मसा महसूस कर रहा हूँ, ये सच है, बस आप भी इसे लेना शुरू कर सकते हैं, ये आपके ऊपर भी आ सकता है, लेकिन आप मुझे मुकद्दस जनूनी पुकारते हैं। जी हाँ जनाब, बस अब ऐ खुदावन, तू जो कुछ भी खुदा से मांगेगा खुदा वो करेगा। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए वही करूँगा, लेकिन अब ऐ खुदावन, जो कुछ भी तू मांगेगा खुदा वो तुझे दे देगा। ओ, इस बात ने उसके अजीम दिल को फेर दिया। यीशु ने कहा, तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा, हाँ खुदावंद, वो जी उठेगा। वो एक अच्छा शख्स था। आखिरी दिन जब सबकी क्यामत होगी वो भी जी उठेगा। वो यहूदी सबकी क्यामत पर ईमान रखते थे। आखिरी दिन जब क्यामत होगी तो वो भी जी उठेगा। उसको देखें, उसने थोड़ा सा अपने आप को जाहिर किया और उसने कहा, क्यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। ओ मेरे खुदाया, इससे पहले कोई ऐसी हस्ती कभी नहीं आई थी जो ये कह सकती, और ना ही कभी कोई ऐसी हस्ती आएगी जो ये कह सकेगी। ये फक्त वही एक हस्ती है जो कह सकती है, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। खुदावंद ये फरमाता है, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने कहा, हाँ खुदावंद। ओ, वो जान गई थी, कुछ तो था जो होने वाला था। जब एक मुखलस दिल ईमान के साथ खुदा से मांगता है और ये दंदे आपस में इस तरह मिल जाते हैं, तो फिर कुछ होने वाला होता है। मैं आज रात इस जमात को यीशु मसीह के नाम में चैलेंज करता हूँ कि अपने ईमान को खुदा के साथ इस तरह जुड़ने दें, तो कुछ ही मिनटों में हमारे पास एक और पेंटिकोस्त होगा। इस शहर के लोगों में ऐसी बेदारी आ जाएगी कि शहर की पुलिस भी इसे रोकने के लिए कम पड़ जाएगी। ये सच है, ये हकीकी बेदारी होगी। अब ऐ खुदावंद, ठीक है खुदावंद, मगर हमने इस पर हर एक हरबा अजमा लिया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, मुझे परवाह नहीं आप क्या कर चुके हैं। अब ऐ खुदावंद, वो तो आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसे पुकारें। वो, क्या तू इस पर ईमान रखती है? यकीनन, जी हाँ जनाब, अब जो कुछ भी आप उससे मांगेंगे। तुमने उसे कहाँ रखा है? अब देखें, वो कब्र पर गया, बस एक इंसान होते हुए वो रोया, मगर खुदा होते हुए वो मुर्दे जिंदा करता है। कुछ अरसा पहले यहाँ एक खातून थी जो लोगों के एक खास ग्रोह से ताल्लुक रखती थी। मैंने कभी भी ये अपनी आदत नहीं बनाई कि तंजीमों के बारे में बोलता रहूँ, मगर वो खातून, वो ईमान नहीं रखते कि यीशु खुदा था, बल्कि ये कहते हैं कि वो बस एक नबी था। अब देखें, वो अगर वो फक्त एक नबी था तो फिर हम सब गुनाह में हैं। वो खुदा से कम नहीं था, बल्कि वो खुदा था, या फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज था। ये सच है, वो इंसान से बढ़कर था। मगर उस औरत ने कहा, वो खुदा नहीं था। आज इस समाजी अंजील की मुनादी में ऐसा बहुत कुछ है। यीशु मसीह को फक्त एक नबी बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर वो तो नबियों का भी खुदा था, यकीनन वो था। उस औरत ने कहा, मैं आपको बाइबल से साबित करके दिखा सकती हूँ। यीशु फक्त एक इंसान था। मैंने कहा, आप ये करें। और उसने कहा, बाइबल कहती है जब वो लाजर की कब्र पर गया तो वो रोया। वो एक इंसान था, वरना वो रो नहीं सकता था। मैंने कहा, खातून, यह है तुम्हारा कलाम? मैं यहाँ ये कहकर गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उसे क्या जवाब दिया। उस खातून ने कहा, ये बात है। मैंने कहा, ये बयान तो मरती हुई मुर्गी के साय से शोरबा बनाने से भी कमजोर है। मैंने कहा, अरे आपको कायम रहने के लिए ये एक बात नहीं मिली? औरत ने कहा, फिर वो क्यों रोया? ये जाहिर करता है कि वो एक इंसान था। मैंने कहा, वो इंसान भी था और खुदा भी था। खुदा जिस्म में जाहिर हुआ था। उसने कहा, ओ ये कैसी हमाकत है। मैंने कहा, वो कब्र पर रोता हुआ गया, ये बिल्कुल सच है। लेकिन जब वो इससे थोड़ा आगे बढ़ा, बाइबल कहती है ना उसकी कोई शक्लो सूरत है, और जब हम उस पर निगाह करें तो कोई हुस्नो जमाल नहीं है कि हम उसके मुश्ताक हों। लेकिन जब उसने अपने कंधों को हिलाया और कहा, लाजर बाहर आ जा, और वो शख्स जो चार दिन का मुर्दा था और कब्र में सड़ रहा था वो बाहर आ गया, तो फिर यहाँ वो एक इंसान से बढ़कर था। मुझे बताएं, क्या कोई इंसान ये कर सकता है? ये क्या था? सड़ाहट भी अपने मालक को जानती थी, जिंदगी जानती थी कि यही खालिक है। वहाँ कुछ हुआ था। जब यीशु ने कहा, तो वो चार दिन का मुर्दा शख्स जो कब्र में पड़ा था दोबारा जिंदा हो गया और अपने कदमों पर खड़ा हो गया और जीता रहा। हालेलुया। ये खुदा था जो अपने बेटे में था। ये खुदा फरमा रहा था, ना के इंसान। उस वक्त वो एक इंसान था जब उस दरख्त से कुछ खाने को गया। यहाँ वो एक इंसान था, लेकिन जब उसने 5,000 को 5 रोटियों और 2 मछलियों से शेयर किया, तो वो एक इंसान से बढ़कर था। ये खुदा था जो उन्हें शेयर कर रहा था। वो एक इंसान और एक नबी से बढ़कर था। वो खुदा इंसान था। यकीनन एक रात वो कश्ती में सोया हुआ था और समुन्दर में एक बड़ा तूफान आ गया और लहरें शोर मचा रही थी और कश्ती उस बड़े समुन्दर में डगमगा रही थी, क्योंकि उस रात लाखों बदरूहें उसे समुन्दर में गिराना चाहती थी। एक इंसान होते हुए वो कमजोर था और बीमारों पर दुआ कर करके थक गया और कश्ती के पीछे वो सो गया और तूफान उसे परेशान न कर पाया। जब वो सोया हुआ था तो वो एक इंसान था, लेकिन जब वो उठा और अपने पांव कश्ती के किनारे पर रखे और ऊपर देखा और कहा, थम जा, साकिन हो जा, तो हवा और तूफान ने भी उसकी बात मानी, तो वो एक इंसान से बढ़कर था। वो खुदा इंसान में था जो अपने आप को जाहिर कर रहा था। ये सच है। सलीब पर जब उसने रहम के लिए पुकारा, तो वो एक इंसान था। जब उसने कहा, मैं प्यासा हूँ, तब वो एक इंसान था। जब वो मुआ, तब वो एक इंसान था। लेकिन जब वो ईस्टर के दिन मौत, कब्र और जहन्नम के बंधन तोड़कर दोबारा जी उठा, तो वो एक इंसान से बढ़कर था। ये खुदा जिस्म में जाहिर हुआ था। क्या ये हैरत अंगेज नहीं जो शायर ने कहा, जिया वो मेरी मोहब्बत में, मुआ वो मुझे बचाने, दफन हुआ तो वो मेरे गुनाह दूर ले गया, जिंदा हुआ तो हमेशा के लिए मुफ्त रास्त बाज ठहरा गया। इसी दिन वो आ रहा है। ओ वो कैसा जलाली दिन होगा। उसने कहा, क्योंकि मैं जिंदा हूँ और तुम भी जिंदा रहोगे। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। क्या आप ईमान रखते हैं? मैं ईमान रखता हूँ। ठीक इस वक्त पाक रू यहाँ मौजूद है। क्या आप ईमान रखते हैं? मैं ईमान रखता हूँ कि वो आज हमें अपनी हजूरी से भर देगा। क्या आप ईमान रखते हैं? मैं ईमान रखता हूँ कि आज पाक रू अपनी हजूरी को अंडेल कर शिफा देगा और जो पाक रू से खाली है उन्हें भर देगा। क्या आप ईमान रखते हैं? क्या आप अपने पूरे दिल से ईमान रखते हैं? आए हम अपने कदमों पर खड़े होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। मेरा ईमान है अब वो ठीक अपनी हजूरी हम पर अंडेलेगा। ऐ खुदावन खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और अबदी जिंदगी के मालिक और हर एक अच्छी नेमत देने वाले, हम इस पर ईमान रखते हैं। खुदावन, हम ईमान रखते हैं कि तू इस इबादत में मौजूद है। हम ईमान रखते हैं कि ये तेरी ही बरकत है जो हमारी रूहों पर अंडेली जा रही है। हम ईमान रखते हैं कि तेरी रूह का नजूल हम पर हो रहा है। हम ईमान रखते हैं कि तू कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। हम ईमान रखते हैं कि तू अब तक जिंदा रहेगा और हमारे नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हैं। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन हम हमेशा रहेंगे, क्योंकि तू अब तक जिंदा रहेगा। ऐ खुदावन, तूने हमसे ये वादा किया है। हम पूरे दिल से इस पर ईमान लाते हैं। ऐ खुदावन, जो कुछ भी हम हैं, हम इस पर ईमान रखते हैं। मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या आप उस पर ईमान रखते हैं? मैं ईमान रखता हूँ कि ये पाक रूह है जो हम पर अंडेला जा रहा है। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? मैं ईमान रखता हूँ। वो इस जगह हर एक शख्स को शिफा देना चाहता है। क्या आप ईमान रखते हैं? आए उसके लिए अपने हाथ उठाएं और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? पाखरू यहाँ मौजूद है। यही है जो पत्रस ने कहा था, यही है और ये पाखरू है। ऐ खुदावन, आसमान और जमीन के खालिक, अपनी कुवत को बेच और अपनी बरकत और अपनी भलाई इन लोगों पर अंडेल और इनके दिलों को बाप बरकत बना दे और होने दे कि ये इब्ने आदम को अब तक जिंदा देख सके। ऐ खुदावन, ये बख्श दे। हम इन्हें खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरे हजूर पेश करते हैं। जो कोई भी पाखरू से खाली है वो अपना हाथ उठाए और खुदा की तारीफ करे। मेरा ईमान है वो आपको भर देगा। कोई इन पर हाथ रखे, यही वक्त है। हम मजीद और इंतजार क्यों करें? यही वक्त है खुदा के पास वापिस आए। यही पेंतिकोस्त का दिन है। ठीक पेंतिकोस्त पर खुदा के पास आ जाएं, अपने दिलों को जिंदा खुदा की कुव्वत से हिलाएं, उसकी रूह को अपने ऊपर आने दें और अपनी जानों को तर होने दें। वो यहाँ हर रोज अपनी अजीम कुव्वत के साथ मौजूद है ताकि बीमार को शिफा दे, अंधे को बेनाई दे और साबित करे कि वो अब तक यकसा है। हालेलुया, अपने हाथ बुलंद करें और उसकी तारीफ करें। भूल जाएं आप इस वक्त कहाँ हैं। बस याद रखें वो आपके चौगिर्द है और उसका जलाल और उसकी कुव्वत और उसका रहम और उसकी भलाई अब तक कायम है। वो अब तक यकसा है। खुदावंद का नाम मुबारक हो। हालेलुया। हो उसके कदूस नाम की तारीफ हो। हो वो कितना अच्छा है, वो कितना महीब है। कितने हैं जो आज खुदा के लिए अपनी जिंदगियां दोबारा से मखसूस करना चाहते हैं? अपने हाथ उठाएं। कितने हैं जो अपनी जिंदगियां खुदा के लिए मखसूस करना पसंद करेंगे? यही है, आए अपने हाथ उठाएं। पेंतिकोस्त पर आ जाएं और खुदा के लोगों को देखें। मैं भी अपने हाथ उठाता हूँ। खुदावन मैं भी यहाँ हूँ, मुझे भेज। ऐ खुदावन एक फरिश्ते को मजबा से कोयले और कुव्वत के साथ भेज। ऐ खुदा ये बख्श दे और ऐ बाप अपनी रूह की मामूरी को भेज। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन, खुदावंद हमारी दुआ सुन ले जबकि हम ईमानदार बच्चों की तरह तेरे हजूर खड़े हैं। उसका नाम मुबारक हो। हो लहरों की तरह उसका जलाल उतर आया है। हो शबनम की तरह उसका रहम बरस रहा है। हो खुदा की हमद हो, हमारी जानें इंतजार कर रही हैं। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? क्या आप ईमान रखते हैं? ये रुलकुस है जो उतर आया है। ये वो नादिदनी कुवत है जो हमें खुदा की बादशाही में लेकर जा रही है। ये पेंतिकोस्त की बरकत है। घर वापिस आ जाएं। आपसे वापिस घर आने की उम्मीद की जा रही है। आप बेशकीमत लोग हैं। खुदा चाहता है कि आप अपने आप को मखसूस करें। बहने अपने आप को साफ करें। भाई अपने आप को साफ करें। आए वापिस खुदा की तरफ मुड़े और खालिस दिल से उसकी खिदमत करें। खुदा की हमद हो, पाखरू इस इबादत में मौजूद है। बस वो करें जो कुछ आप महसूस करते हैं। बस पाखरू को अपने ऊपर जुम्बश करने दें। मैं कुछ भी नहीं कह सकता, अब मुझे नहीं पता कि अब क्या कहूँ। बस पाखरू इमारत में चारों तरफ छाया हुआ है। खुदावंत का नाम मुबारक हो, खुदावंत की तारीफ हो। हो हालेलुया, हालेलुया, खुदा की तमजीद हो, खुदा की सना हो। वो कितना अच्छा है, कितना जलाली है, कितना खूबसूरत है, कितना बड़ा है और खुदा के मुकद्दसीन के मुंह में उसकी स्ताइश है। पाखरू की हजूरी यहाँ है और वो जुम्बश कर रहा है और अपने जलाल को इस जमायत में जाहिर कर रहा है जो कि एक दिल होकर उसके नाम की तमजीद कर रहे हैं। एक दूसरे की तरफ मुड़कर हाथ मिलाएं और कहें, भाई खुदावंद आपको बरकत दे, बहन खुदावंद आपको बरकत दे। आएं, खुदा को अपने आप पर आने दें और ठीक हो जाएं। खुदावंद की तारीफ हो। ये सच है। आप तमाम मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन और पेंटिकॉस्टल और सेवंथ डे एडवेंटिस्ट या आप जो कोई भी हैं, खुदावंद खुदा की हजूरी में एक दूसरे से हाथ मिलाएं, ये बात है। ओ हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ओ मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। ओ सारी दीवारें गिर रही हैं। ओ साफ किया जा रहा है। जलालो खुदावंद में आजादी से उसके पाक नाम की तमजीद करें। खुदावंद का नाम मुबारक हो। ओ हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। ओ मैं तो बस यही देखना पसंद करता हूँ, लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएं और उनके चेहरों पर नूर जलवागर हो। खुदावंद की कुवत फरमाती है, यही कुछ है, यही बात है कि हम खुदा के बेटे हैं। हम सब मिलकर एक बड़ी अजीम कलीसिया हैं और मसीह यसु में एक बड़ी अजीम शख्सियत है, यानी उसकी जलाली दुल्हन है और खुदावंद की आमद करीब आ रही है। उसके लोग इकट्ठे हो रहे हैं और एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और उसकी कुवत और प्यार में बढ़ रहे हैं। ओ ये आकाश की तरह है। ओ ये बहुत अच्छा है। आमीन। हो ये कितना जलाली है, ये कितना अच्छा है। बस खुदावंद की कुवत और रूह में उसकी स्ताइश करें, ये वो वक्त है। यही ठहरना था शुरू, बस कुछ नहीं। मैंने भाइयों को बताया था, भाइयों रुकने का कोई मकाम नहीं है, यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है। हमने आगाज नहीं किया इसलिए हम रोक भी नहीं सकते। बस बस ये कितना अच्छा है। बस खुदा की हजूरी में कितने हैं जो वाकई अच्छा महसूस कर रहे हैं। ओ मेरे खुदाया, ये बहुत ही उम्दा है कि खुदा की हजूरी यहाँ मौजूद है। अब देखें, खुदावंद की हजूरी यहाँ मौजूद है ताकि लोग शिफा पाएं और तंदुरुस्त हो जाएं। फक्त उस पर ईमान रखें। क्या आप ईमान रखते हैं? अगर हम उस पर ईमान रखें तो सब कुछ मुमकिन है। क्या आप ईमान रखते हैं? क्या आप ईमान रखते हैं कि ये खुदावंद की हजूरी है? अब जबकि आप मुझे अब बस थोड़ा सा वक्त दें, फक्त कुछ लम्हे, बस कुछ लम्हे, और सुने, मैं आपको साबित करता हूँ कि पाक रूह यहाँ मौजूद है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये पाक रूह है जो बातचीत कर रहा है और वही है जो जानता है कि क्या करना है। अब यहाँ कितने हैं जो बीमार हैं? आए अपने हाथ उठाएं। एक था जो बीमार था यहाँ इन लोगों में। यहाँ एक शख्स खड़ा हुआ है। मिस्टर क्या आप ईमान रखते हैं? यहाँ दुआया कार्ड्स नहीं दिए गए, लेकिन क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा आपको शिफा दे सकता है? क्या आप ईमान रखते हैं कि वो मुझे आपकी परेशानी बता सकता है और ये परेशानी आपके पहलू में है और आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? ये सच है। आपका नाम मिस्टर कार्टराइट है, ये सच है। क्या ये सच है? तो अपने हाथ लहराएं। ठीक है, घर जाएं। आप ठीक हो गए हैं, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? ये शख्स जिसने अपने बच्चे को हाथों में उठाया हुआ है, क्या आप ईमान रखते हैं कि मैं खुदा का खादम हूँ? क्या आप ईमान रखते हैं कि ये पाक रूह है? मैं आपको नहीं जानता, क्या ये सच है? मैंने अपनी जिंदगी में आपको कभी नहीं देखा, हम अजनबी हैं। क्या आप ईमान रखते हैं कि पाक रूह मुझे बता सकता है कि इस बच्चे के साथ क्या मसला है? इसे छपाकी है, क्या ये सच नहीं है? यकीनन ये सच है। और आप यहाँ से नहीं हैं? नहीं, आप खुद मैदे की बीमारी में मुब्तला हैं और उससे दुख उठा रहे हैं, ये सच है, क्या ये सच नहीं है? आप कंसास शहर से हैं, ये बिल्कुल ठीक है, वापिस जाएं, यीशु मसीह ने आपको ठीक कर दिया है। फक्त ईमान रखें। हालेलुया। क्या आप पूरे दिल से ईमान रखते हैं? यहाँ खुदावंद का फरिश्ता मौजूद है और एक खतून पर ठहरा हुआ है जो थोड़ी सी बुजुर्ग है और हर्नियों की बीमारी से दुख उठा रही है। बहन क्या आप ईमान रखती हैं कि खुदा आपको हर्नियों से शिफा दे सकता है? आप जिसने छोटा सा लाल फूल अपनी हेड पर लगाया हुआ है, अपना हाथ उठाएं, घर जाएं और अपनी शिफा पाएं। आमीन। ओ ये खुदा है, ये खुदा का बेटा मसीह है, वो मुर्दों में से जी उठा है और यहाँ मौजूद है। अब हर एक आप में से एक दूसरे पर हाथ रखे और आप में से हर एक दुआया माहौल में आ जाए। जबकि मैं यहाँ किसी और को आने की दावत देता हूँ। यहाँ आ जाएं, भाई। जबकि आप एक दूसरे पर हाथ रखे हुए हैं, तो ये जाहिर करता है कि खुदा शिफा देता है। भाई यहाँ आएंगे और दुआ करेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। खुदावंद खुदा की हम्द हो।